इस सीमा तक के व्यापारिक संबंधों के कारण सांस्कृतिक संबंधों में भी वृद्धि हुई। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के स्मारकों से भारत का पश्चिमी देशों से सांस्कृतिक मिश्रण व एकीकरण का आभास मिलता है। जब फारस का साम्राज्य सीरिया तक विस्तृत हो गया तथा सिकंदर महान ने फारस पर विजय प्राप्त करके ग्रीक साम्राज्य की सीमा पंजाब तक बढ़ा ली, उस समय पश्चिम व पूर्व एक दूसरे के अधिक समीप आ गए थे। भारतीय कला पर हेलिनिस्टिक प्रभाव, जो गांधार शिल्प में स्पष्ट देखा जा सकता है, तथा ईसाई सिद्धांतों में बौद्ध प्रभाव सिकंदर के आने के बाद का परिणाम है। एशिया व अफ्रीका के ग्रीक सम्राटों से, जो सिकंदर के शासन के उत्तराधिकारी हुए, भारतीय राजाओं के बड़े मित्रतापूर्ण संबंध थे। बौद्ध विचारों के प्रसार का सबसे बड़ा प्रमाण अशोक स्तंभ 256 वर्ष ईसा पूर्व था, जिसके लिए उनका कहना है कि धर्म का विस्तार एंटियोकस के साम्राज्य के बाद चार राजाओं टॉलमी एंटीगोनस के साम्राज्य के बाद टॉलमी एंटीगोनस मगर तथा सिकंदर, जो क्रमशः मिस्र, सीरिया, क्रीट तथा मैसिडोनिया के सम्राट के थे, के राज्य तक था। धर्म का यहाँ तक विस्तार हुआ या नहीं प्रमाणित नहीं हो सका, पर इतना निश्चित है कि सेल्यूसिड से अशोक के मित्रतापूर्ण संबंध अवश्य थे। अगस्टस के समय से तो रोमन साम्राज्य में भारतीय राजदूतों की नियुक्तियां होने लगी थी। भारत व अरब। भारत का प्रभावशाली सागरी आधिपत्य हूण तथा मुस्लिमों के बार बार आक्रमण करने के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भारत से दूर दूर तक व्यापारिक यात्राओं के अभियान की अपेक्षा बाह्य आक्रमणों को रोकने की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। सातवीं सदी में अरबों के मिस्र व फारस पर विजयोपरांत स्थल तथा जल दोनों ही मार्ग अरबों के नियंत्रण में आ गया। संपूर्ण व्यापार अरब ही संचालित करने लगे तथा भारत ने पूरी तरह स्वयं को इससे अलग रखा। सन 710 के बाद शीघ्र ही सिंधु पर विजय के बाद महत्वपूर्ण पत्तनों अल डायबुल तथा अल मंसूरा पर अधिकार के बाद अरब सुदूर पूर्व व चीन के एक कदम और समीप आ गए। इन्होंने भारतीय वस्त्रों तथा सामग्रियों, फारस तथा अरब के घोड़ों, पूर्वी अफ्रीका के सोने व हाथीदांत, इंडोनेशिया, श्रीलंका व मालाबार तट के मसालों तथा चीन के सिल्क से चीन सागर तथा हिंद महासागर में बड़ा लाभ कमाया। 14वीं सदी तक अरब प्रगति मध्यम हो गई प्रतीत होती है, क्योंकि जब इब्न बतूता चीन गया तो उसने पाया कि मालाबार व कालीकट तट के पत्तनों का व्यापार चीनी जलयानों द्वारा संचालित हो रहा था। अरबों ने इसी समय में भारतीय दर्शन, गणित, ज्योतिष तथा औषधि का ज्ञान प्राप्त किया, जिसे वे अपने देश तक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक ले गए। भारत व पूर्वी अफ्रीका। इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि अफ्रीका के पत्तनों पर रहने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा संचालित अफ्रीका का अधिकतर व्यापार टायर, सीरिया व लेबनान को हुआ करता था। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, प्रारंभ से ही पूर्वी अफ्रीका अरब तथा भारत के बीच बड़ा उन्नत कोटि का व्यापार था। भारत तथा इथियोपिया के मध्य बड़े प्राचीन काल से संबंध थे। अफ्रीका में सर्वप्रथम यहाँ ही भारतीय बसना प्रारंभ किए। डाबरा डामो की खुदाई में मिले तीसरी सदी के लगभग 100 भारतीय सोने के सिक्के इन संबंधों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इथियोपियन सभ्यता पर इनका स्पष्ट प्रभाव मसालों के प्रयोग, गन्ने की कृषि के प्रारंभ, वस्त्र बुनने की कला, एग्जम की कला व शिल्प पर प्रभाव तथा साहित्यिक कथा वस्तु जैसे यशोदा और व बलराम की कथा जो मध्ययुग में यूरोप तक पहुंच गई के प्रचार से स्पष्ट होता है। जबकि विपरीत दिशा में 13वीं सदी के प्रारंभ से इथोपियाई गुलामों की, जिन्हें हप्सी या सिद्दी भी कहते हैं, गुजरात से श्रीलंका तक प्रशंसा होती थी। इनका प्रयोग मछुआरों तथा सैनिकों के रूप में होता था। इनमें से बहुत से खंबात की खाड़ी के आंतरिक भागों में रहते थे। इनके अफ्रीकी मूल के अंग्रेज अभी भी कुछ समूहों में देश के पिछड़े वर्गों में हैं। 16वीं सदी से अब तक विनिमय मसावा के संपन्न वणिकों के हाथ में है। पूर्वी अफ्रीका के पत्तनों पर अधिकतर अरब या फारस मूल के निवासियों शासन का था। पर व्यापार भारत या भारत संबंधित अरबों के हाथ में। अधिकतर भारतीय व्यापारियों के निवास भारत में सिंध प्रांत के तत्ता, कच्छ के मांडवी, कटियाबाड़ या खंबात की खाड़ी के पत्तन या सूरत, कालीकट अथवा मालाबार तट के अन्य पत्तन हुआ करते थे। इनका व्यापार अधिकतर पुराने ढंग के जलियानों, व्यापारिक हवाओं की दिशा पर आधारित एक ही प्रकार की वस्तुओं के आयात निर्यात पर निर्भर था। यद्यपि भारत के व्यापार विशेषकर सूती वस्त्र को पुर्तगाली व अंग्रेज व्यापारियों द्वारा बड़ा धक्का पहुंचा तथा इनके सुसज्जित जहाजों व सशस्त्र रक्षकों के कारण हिंद महासागर में व्यापार भी असुरक्षित हो गया, फिर भी अफ्रीका से हाथी दांत व अन्य उत्पादनों का तथा भारत से सूती वस्त्रों, धातुओं व मोतियों का थोड़ा व्यापार चलता रहा। गुलामों का व्यापार। गुलामों का व्यापार सदियों पहले से होता था, परंतु इसका विस्तार संसार के बाजार में इनका विक्रय 16वीं सदी के बाद, जब यूरोपियनों ने बागाती कृषि, पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों व दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में विकसित किया प्रारंभ हुआ। फ्रांसीसी, डच तथा स्पेनवासी बगाती कृषि हेतु इन्हें अपने उपनिवेशों में ले जाने लगे। सर्वप्रथम मोजाम्बिक में गुलामों का व्यापार व गुलामी प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। गुलामों के व्यापार हेतु अफ्रीका का पूर्वी तट, विशेषकर केप डेलागैडो के दक्षिण की खाड़ियाँ प्रसिद्ध थीं। ईबो, क्वेरिम्बा द्वीपों, क्विलीमान तथा सोफाला से गुलाम मोजाम्बिक, कोमोरो द्वीपों, मेडागास्कर, रियूनियन तथा मेडागास्कर के द्वीपों व बाजारों को भेजे जाते थे, जहां से पुनः फ्रांसीसी, अमेरिकन, पुर्तगाली तथा स्पेन निवासी इन्हें अपने उपनिवेशों में ले जाते थे। यहां से कुछ गुलामों का निर्यात रियो डी जेनेरो, पर्नाम्बुको तथा सेंटोस के बाजारों में पुनः विक्रय हेतु होता था। इनका यह व्यापार अधिकतर अरबों के हाथों में था। अंग्रेजों की गुलामी प्रथा समाप्त करने के अभियान के समय कभी कभी पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी पकड़े जाने पर बदनामी के भय से नकली अरब झंडों तथा जाली कागजों का प्रयोग कर गुलामों को ले जाते थे। उत्तर में गुलामों का सबसे महत्वपूर्ण बाजार जंजीबार था। गुलामों को प्राप्त करने का क्षेत्र भूमध्य रेखा तथा डेलागोवा खाड़ी के बीच आंतरिक भागों में टंगानिका व न्यासा झीलों तक, मून पर्वतों तक विस्तृत था। ये मुख्यतया लाल सागर तट पर स्थित जेद्दा व मक्का द्वारा टर्की, पूर्वी अरब प्रांतों मस्कट तथा सूर को तथा दक्षिणी पूर्वी अरब, फारस, सिंध व अंग्रेजी काल के पश्चिमी भारत को तथा बुसायर होकर बसरा व बगदाद को भेजे जाते थे। स्थल पर चलता हुआ गुलामों का कारवां लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा भारत के पत्तनों तक आता था, जहां से कुछ स्थानीय खपत के लिए रखकर शेष को अन्य देशों में भेज दिया जाता था। अकेले जंजीबार से भेजे जाने वाली गुलामों की कुल संख्या औसतन 20,000 प्रतिवर्ष थी, जिनमें लगभग 15,000 लाल सागर, फारस की खाड़ी व भारत के पत्तनों तक आते थे। दक्षिण तटीय क्षेत्र मोजाम्बिक से मेडागास्कर होकर रियूनियन व मॉरिशस होते हुए लैटिन अमेरिका तथा अन्य देशों को भेजे जाने वाले गुलामों की संख्या उत्तर से कम नहीं अनुमानित की जाती। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि अफ्रीका से कुल 5 करोड़ गुलामों का निर्यात हुआ। 1814 के बाद सबसे पहले वियना की कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलामों के व्यापार का विरोध किया गया। 15वीं सदी के आसपास से लेकर पुर्तगाली काल तक अबिसिनिया व अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों से काफ़ी संख्या में पश्चिमी भारत में गुलाम आते रहे, पर अंग्रेजों के समय में बलूचिस्तान को मिलाकर भारत में इनकी संख्या कम होकर 200 से 800 वार्षिक से अधिक नहीं होती थी। बंबई सरकार के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीकी गुलामों को अरब जहाजों में लाकर सिंध, कच्छ, कठियावाड़ व पुर्तगाली गोवा, दमन व दीव को भेज दिया जाता था। 1841 में बंबई सरकार को यह जानकर बड़ा धक्का पहुंचा कि मस्कट से आने वाले जलियान निग्रो गुलाम ले आते हैं तथा यहां से हिंदू स्त्रियों को ले जाकर जंजीबार में बेचते हैं। 1873 में अंग्रेज़ों द्वारा हिंद महासागर में गुलामी बंद करने के लिए कई कदम उठाए गए तथा मस्कट व जंजीबार के सुल्तानों से इस संबंध में संधियां भी हुई। भारतीय श्रमिक 1834 में अंग्रेजी उपनिवेशों में तथा 1849 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी के उन्मूलन के बाद गुलामों का व्यापार एक नए वेश में भारतीयों के प्रवास के रूप में सामने आया। उपनिवेशों में निग्रो गुलामों की कमी के कारण भारतीय श्रमिकों का प्रवास प्रारंभ हुआ, जिनका इतिहास में विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। कितना अंतर था भारतीयों के प्रारंभिक प्रवास से, जब ये इन्हीं देशों से अपनी महान सभ्यता व संस्कृति के राजदूत तथा साधारणतया अनुपलब्ध सामग्रियों के व्यापारियों के रूप में जाया करते थे। 19वीं सदी के बाद के आधे भाग में दक्षिणी हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में मॉरिशस, रियूनियन, मेडागास्कर व फीजी, दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलाया, बर्मा व श्रीलंका, अफ्रीका में केनिया, टंगानिका, युगांडा, जंजीबार व नेटाल, कैरिबियन में ट्रिनिडाड व जमैका, दक्षिणी अमेरिका में ब्रिटिश गयाना व सूरीनाम में काफ़ी भारतीय श्रमिक भेजे गए। निग्रो लोगों की तरह ये भी रंगभेद नीति के शिकार हुए व नागरिकता के अधिकारों से वंचित रहे। अंत में 1906 में गांधी जी के सत्याग्रह से उन्हें उनके अधिकार प्रदान किए गए। यूरोपीय प्रभाव, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, कई शताब्दियों तक यूरोपियनों को अरबों द्वारा पूर्व से चीन का सिल्क, मसाले व बहुमूल्य रत्न पहुंचता रहा तथा जैसा कि हेगल ने लिखा है, इंडिया एज अ लैंड ऑफ डिजायर फॉर्म्ड एज इसेंशियल एलिमेंट इन जनरल हिस्ट्री फ्रॉम द मोस्ट एंशियंट टाइम्स डाउनवर्ड्स ऑल नेशंस हैव डायरेक्टेड देयर विशेस एंड longings to gain access to the treasures of this land of marvels। भारत की अद्भुत भूमि तथा बहुमूल्य निधि से आकर्षित होकर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी व डेनिश स्वयं दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर आकर्षित हुए। इस संदर्भ में 15वीं सदी के अंत 27 मई 1498 में वास्को डिगामा का केप ऑफ गुड होप होकर भारत के सभी मार्गों की खोज बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे अरब व्यापार की एक छत्रता टूट गई तथा पूर्वी दिशा का व्यापार यूरोपियनों की ओर आकर्षित हो गया। इतिहास का यह एक बहुत बड़ा व्यंग था जब एक अरब नाविक अहमद इब्न मजीद वास्को डिगामा को मालिंदी, पूर्वी अफ्रीका के तट पर बसी एक संपन्न अरब व्यापारिक बस्ती से भारत का मार्ग दिखाकर सदा के लिए अरब व्यापार के पांवों में कुल्हाड़ी मार दी। पश्चिम तथा पूर्व के बीच का स्थलीय मार्ग मध्य पूर्व के मुस्लिम राज्यों द्वारा अवरुद्ध था तथा 200 वर्षों तक ईसाइयों की एकत्रित शक्ति इस अवरोध को तोड़ सकने में सक्षम नहीं हो सकी थी। यूरोप को भारत तथा इंडोनेशिया के मसालों वह बहुमूल्य पदार्थों की आवश्यकता थी ही तथा सागरीय मार्गों की खोज होनी थी। वास्को डिगामा ने इस सभ्यता का समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया। इससे पहले भारतीय अरब तथा अन्य स्थानीय निवासी अपने जलयानों में व्यापारिक माल भरकर हिंद महासागर में एक पत्तन से दूसरे पत्तन ले जाकर शांतिपूर्ण वातावरण में विनिमय करते थे। किसी ने भी सागर पर अपना विशेष अधिकार नहीं जताया। पुर्तगालियों के आने के साथ सागर पर स्वामित्व तथा एक छत्रता का नया तत्व सामने आया। पुर्तगाली शासक डॉम मैनोल स्वयं को द लॉर्ड ऑफ नेविगेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉमर्स ऑफ इथियोपिया, अरेबिया, पर्सिया एंड इंडिया की उपाधि से भी भूषित करता था। इसका कारण था कि ये अपनी यात्रा के दौरान दिखाई दिए किसी भी जलयान को बिना चेतावनी के अवरोध उत्पन्न कर नष्ट कर देते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए अफ्रीका तथा एशिया के तट पर स्थित महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापारिक चौकियां या किले स्थापित कर दिए। जिस भी नगर ने पुर्तगाली एकाधिकार को अस्वीकार किया वह या तो लूट लिया जाता था या मिट्टी में मिला दिया जाता था तथा संपूर्ण जनसंख्या का वध कर दिया जाता था। पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित मुम्बासा तथा किलवा, भारत में गोवा तथा कुछ अन्य नगरों में ऐसा ही हुआ, परंतु बिना विरोध के इन्हें कभी भी विजय प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कालीकट के जमोरियन ने मलाबार तट पर पुर्तगाली शासन को 90 साल तक रोके रखा तथा उनके विरोध में कई सफल युद्ध लड़े। जंजीबार पर नियंत्रण के लिए अरब सुल्तानों तथा पुर्तगालियों में भीषण युद्ध हुआ। भारतीय तथा अरबों ने अपने जलयानों को तटीय सुरक्षा के अतिरिक्त कभी भी युद्ध के लिए नहीं प्रयोग किया, जबकि पुर्तगाली जहाज तोपों से लैस रहा करते थे। परिणामस्वरूप 16वीं सदी तक हिंद महासागर में पुर्तगाली जलयान तटीय देशों के प्रमुख उत्पादन मसाले, रत्न, सिल्क आदि ढोते देखे जाते थे तथा उस समय पुर्तगाल ने हिंद महासागर में अपने व्यापार आधिपत्य से सर्वाधिक लाभ उठाया। हिंद महासागर की निधि से आकर्षित होकर अन्य बहुत से पश्चिमी यूरोप के देश हॉलैंड, फ्रांस तथा ब्रिटेन हिंद महासागर में आए, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य रोकने में समर्थ न हो सका। 17वीं सदी तक एक के बाद एक पुर्तगाली कीलों का पतन होने लगा, जैसे हार्मूज अंग्रेज तथा फारस निवासियों के हाथ में और मलक्का, कोलंबो तथा कई अन्य डचों के हाथ में चला गया। 17वीं सदी के अंत तक पुर्तगाल के पास केवल गोवा, मकाओ व तिमोर बचा। डचों ने स्वयं को इंडोनेशिया में व्यस्त रखने के लिए के अतिरिक्त मलक्का पर अधिकार जमाया, श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा तथा कोचीन व नागापट्टनम को सम्मिलित करके भारत की कुछ व्यापारिक चौकियों पर अधिकार रखा। अंग्रेजों ने भारत पर तथा फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर आधिपत्य स्थापित किया। ये देश भारत से मतलब मलमल व सूती वस्त्र, चीन से सिल्क व चाय तथा पूर्वी भारत से कहवा ले जाया करते थे। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापारिक संरचना में बड़ा परिवर्तन आया। उद्योगों में वृद्धि के साथ साथ विदेशी विलासिता की सामग्री के अतिरिक्त कच्चा माल भी इनके जलयानों में ढोया जाने लगा। इन्होंने पाल वाले जलयानों को वाष्पचालित जलयानों से स्थानापन्न करके यूरोप को हिंद महासागर के और समीप ला दिया। स्वेज नहर के खुलने के बाद महीनों में पूरी की जाने वाली यात्रा सप्ताहों में परिवर्तित हो गई। वाष्प की शक्ति का पता चलते ही रेलवे का भी आविष्कार हुआ, जिससे अधिकृत पत्तनों के आंतरिक भागों में कच्चे माल के स्रोत क्षेत्र तक प्रवेश संभव हो सका। शीघ्र ही यूरोपीय शक्तियों ने एशिया व अफ्रीका के आंतरिक भागों तक अपना साम्राज्य दृढ़ कर लिया। 2 सदियों तक हिंद महासागर में साम्राज्य स्थापन हेतु ब्रिटेन की पश्चिम यूरोप के देशों से गहन प्रतिद्वंद्विता चलती रही। अंत में इसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों को, इसके बाद डचों तथा फ्रांसीसियों को इनके कई पूर्व स्थापित उपनिवेशों से निष्कासित कर दिया। फिर भी पुर्तगालियों के पास मोजाम्बिक, गोवा, मकाओ व तिमोर, डचों के अधिकार में इंडोनेशिया तथा फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी तथा हिंद महासागर के कुछ द्वीप रह गए। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया व मध्य पूर्व में कई चौकियों पर शासन स्थापित करने वाला ब्रिटेन एशिया में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बन गया। अफ्रीका, विशेषकर हिंद महासागर के तटवर्ती पूर्व अफ्रीका के विजय की कहानी थोड़ी भिन्न है। अमेरिका में सोने तथा चांदी की खोज के बाद खानों में काम करने के लिए आदिम जनसंख्या की आवश्यकता हुई, जिसके लिए पूर्वी अफ्रीका पूर्णतया काले लोगों के व्यापारिक शिकार का क्षेत्र बन गया। फलस्वरूप पूंजीवादी देशों में औद्योगिक उत्पादन का सूर्योदय हुआ। 15वीं सदी में तो यूरोपीय शक्तियों के अफ्रीका पर आक्रमण का उद्देश्य गुलामों का व्यापार था, जिसे पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया तथा जो पूरी 4 शताब्दियों तक चलता रहा। शीघ्र ही अफ्रीका की अगाध प्राकृतिक संपत्ति ने आक्रमणकारी शक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। परिणामस्वरूप भूखंडों को निःशुल्क हथियाने की दौड़ प्रारंभ हुई। इसमें पुर्तगालियों ने 18वीं सदी में सर्वप्रथम मोजाम्बिक तथा 19वीं सदी में दक्षिणी अफ्रीका पर कब्जा किया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में पूर्वी अफ्रीका में चल रही यह प्रक्रिया ब्रिटेन के मिस्र, सोमालिया के कुछ भाग, जंजीबार तथा सूडान पर अधिकार के साथ चरमोत्कर्ष पर जा पहुंची। फ्रांसीसियों ने कोमोरो द्वीप, मेडागास्कर तथा सोमालिया के कुछ भाग पर अधिकार किया। 20वीं सदी के प्रारंभ के साथ भूखंडों को निशुल्क हथियाने की शताब्दी भी प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ समाप्त हो गई। हिंद महासागरीय देशों के गहन उपनिवेशीय शोषण के प्रति सामान्य जनता का विरोध बढ़ता रहा। यह प्रथम विश्व युद्ध से पहले प्रारंभ हो चुका था, परंतु सोवियत यूनियन में समाजवादी क्रांति से इसमें बड़ी प्रगति हुई। उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा विद्रोह दबाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ गए। 1947 में मेडागास्कर में प्रजातांत्रिक संगठनों, जो द्वीप की स्वतंत्रता चाहते थे, को उखाड़ फेंकने के प्रयत्न के कारण विद्रोह की अग्नि पूरे मेडागास्कर में भड़क गई। विमान, स्थल सेना व टैंक मरमागासियों के विरुद्ध क्रियाशील हो गए। राजनैतिक बंदी तथा कैदी विमानों से गिरा दिए जाते थे। इस दौरान लगभग 1,00,000 व्यक्ति मार डाले गए। 1953 से 56 के मध्य ब्रिटेन ने केनिया वासियों से, जो देश की स्वतंत्रता चाहते थे, बड़ा क्रूरतापूर्ण युद्ध किया। मिस्र के स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल ने यहाँ घमासान युद्ध किया। उपनिवेशवादी शक्तियों ने देशभक्त पार्टियों तथा संगठनों व ट्रेड यूनियनों का निषेध कर दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को घूस देकर या समाप्त कर सीमित करना चाहा। पुर्तगाली एजेंटों ने मोजाम्बिक लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर एडवर्डो मोंडलेन को कत्ल कर डाला। इन सब क्रियाकलापों के से विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि इसने शक्तिशाली अग्नि का रूप धारण कर लिया, जिससे उपनिवेशवादियों को पीछे हटना ही पड़ा। राष्ट्रीय संघर्ष मॉरिशस। प्रारंभ में मॉरिशस पर स्थायी निवास नहीं था। 17वीं सदी में डचों ने एक बार बस्तियां स्थापित करने का निष्फल प्रयास किया। 1721 में इस पर फ्रांसीसी अधिकार होने के बाद बस्तियों का विकास प्रारंभ हो सका। 1810 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार करके उपनिवेश बनाया तथा 1968 में इसकी स्वतंत्रता तक इस पर अपना अधिकार जमाए रहे। फ्रांसीसी प्रवास 1721 से 1810। 1767 तक यह द्वीप मुख्यतः मध्यस्थ पत्तन, पोर्ट ऑफ कॉल की तरह कार्य करता रहा। बाद में विक्रय योग्य सामग्री कहवा, कपास, गन्ना आदि की कृषि प्रारंभ हुई। अतः बस्तियों के विकास के साथ साथ कृषि कार्य हेतु गुलामों की आवश्यकता हुई। प्रारंभ में अधिकतर गुलाम मेडागास्कर से आए। 1767 के बाद गुलामों का व्यापार केंद्र मोजाम्बिक कर दिया गया। फ्रांसीसी नौसेना के प्रशासन में पत्तन खुलते ही फ्रांस से बड़ी संख्या में व्यापारियों का आना प्रारंभ हो गया। 1808 में पोर्ट लुइस में हुई जनगणना में 674 कार्यरत व्यक्तियों में 365 व्यापार में संलग्न थे। यहाँ के प्रमुख कार्यकलापों में यूरोप, अमेरिका तथा भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों से व्यापार, मेडागास्कर से निग्रो गुलामों का आयात तथा सामरिक दृष्टिकोण से स्वयं को सुदृढ़ बनाना था। अंग्रेजों का प्रवास 1810 से 1900। अंग्रेजों की विजय के बाद पोर्ट लुइस विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया। 1813 में गुलामों का व्यापार समाप्त हो गया। युद्ध के कारण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों से व्यापार समाप्त हो गया। इन घटनाओं के कारण द्वीप को पुनः नया जीवन प्रारंभ करना पड़ा। 1820 में पत्तन को पुनः खोला गया तथा कई वर्षों तक पुनः गुलामों का व्यापार चला। 1820 में द्वीप के अर्थतंत्र का आधार सागरीय व्यापार से परिवर्तित होकर कृषि हो गया। कृषि अधिकतर मुद्रादायिनी फसलों, विशेषकर गन्ने के उत्पादन पर केंद्रित रही। 1835 में गुलामी प्रथा के उन्मूलन के बाद भारतीय श्रमिकों का स्वैच्छिक आवागमन प्रारंभ किया गया, क्योंकि गन्ने की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पहला दल मद्रास से 1829 में आया, तत्पश्चात 1834 में कलकत्ता तथा बंबई से दो दल पुनः आए। इन तीनों स्थानों पर 1835 से कई एजेंसियों ने अधिकाधिक संख्या में श्रमिक भेजना प्रारंभ कर दिया। इसका नाम कूली व्यापार रखा गया, जो निग्रो गुलामों के व्यापार की ठीक अनुकृति थी। अंग्रेज पूंजीपतियों ने इस व्यापार में वृद्धि के लिए आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। बंगाल से कूलियों के साथ साथ उनका मुख्य भोजन चावल लाकर दोहरा लाभ प्राप्त किया जाने लगा। भारतीय कूलियों की संपूर्ण आवश्यकता चावल, दाल, आटा, घी तथा पहनने के कपड़े सभी कुछ आयात करना पड़ता था, जिससे इन वस्तुओं के आयात पर 1835 में 2,20,069 पाउंड से 1838 में 4,20,566 पाउंड का खर्च बढ़ गया, जो बाद में और भी बढ़ा। इनकी संख्या 1909 तक बढ़कर 4,50,000 हो गई। इनमें अधिकतर हिंदू थे। इनमें से केवल एक तिहाई ही स्वदेश लौट सके। शेष द्वीप की जनसंख्या की कृत्रिम वृद्धि में सहायक हुए। 1900 से अब तक 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापार की दिशा में पुनः परिवर्तन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ से चीनी पुनः यूरोप को भेजी जाने लगी। 1907 में भारत से श्रमिकों का आयात व्यापार कम होने लगा। 1922-23 में श्रमिकों के आयात हेतु पुनः प्रयास किए गए, पर सफलता न मिली। परिणामस्वरूप यूरोप वापस लौटो अभियान के अंतर्गत यूरोपीय प्रवासियों का आगमन भी कम होने लगा। इसके विपरीत यहाँ क्रियोल जनसंख्या का प्रवास मेडागास्कर, जो 1815 से फ्रांस के अधिकार में था, तथा दक्षिण अफ्रीका को होने लगा। 1920 में नेटाल प्रांत में मॉरिशस का एक उपनिवेश बस गया। इन सब कारणों तथा मलेरिया के कारण 1940 में भी लगभग 3,71,023 की जनसंख्या ही रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि 1944 में 419,185 से 1962 में 681,619 तथा 1973 में 8,35,000 हो गई। इसके लिए उत्तरदायी तत्व चीनी मुस्लिम जनसंख्या में अनपेक्षित वृद्धि है। चीनी जनसंख्या 1901 में 3,509 से 1973 में 35,000 तथा मुस्लिम जनसंख्या 1901 में 41,208 से 1962 में 1,10,332 हो गई। इस समय प्रवास द्वारा जनसंख्या का दबाव कम करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ से ही ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले प्रवासियों का बाहुल्य रहा है। जैसा कि 1850 के प्रारंभ की सोने की खोज का ऑस्ट्रेलिया के स्थानांतरण के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अन्य देशों, अंग्रेजों को छोड़कर, के निवासियों का महत्व बढ़ना प्रारंभ हो गया। 1847 में 20% से बढ़कर 1861 में इनका भाग 7% हो गया। 1861 में दो महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक चीनी 39,000 तथा जर्मन 29,000 थे। 1891 में जर्मन उत्पत्ति वालों की संख्या 46,000 हो गई थी, जिनकी अंग्रेजों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या थी। इसके बाद चीनी 33,000 तथा डच 10,000 आते थे। ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक विकास में विदेशियों का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा है। कुछ जर्मनों ने विज्ञान तथा अन्वेषण के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे लीचहार्ट ने, जो ऑस्ट्रेलिया 1841 में आए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का अन्वेषण किया। अन्य जर्मन अन्वेषकों में मेंज, न्यूमेयर तथा बेकलर प्रमुख थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बैरनवाल मूलर द्वारा वनस्पति शास्त्र में तथा लैंडेनफेल्ड व मेंज द्वारा जंतु विज्ञान व भूगर्भ शास्त्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य किए गए। इन्होंने आर्थिक महत्व के क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की। यद्यपि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पूंजी निवेश कर शराब उद्योग प्रारंभ किया, जर्मनों ने छोटे किसानों को तकनीकी विशेषता प्राप्त कुशल श्रमिकों की आपूर्ति की। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तथा सोने की खानों से आए जर्मन विक्टोरिया में बीमर्स में आ बसे। जर्मन प्रवासियों की 15 इंच वार्षिक वर्षा से कम होने वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि की सफलता के कारण ही माली प्रदेश विकसित हो सका। डचों का भी ऑस्ट्रेलिया से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एडवर्ड नॉक्स नामक डेन ने कॉलोनियल सुगर रिफाइनिंग कंपनी खोली, जो चीनी उद्योग के विकास में बड़ा शक्तिशाली तत्व बन गया। ये डेयरी उद्योग में प्रारंभ से ही बड़े प्रवीण रहे हैं। यहाँ भी इन्होंने यांत्रिक सेमेस्टरों का प्रयोग कर मक्खन, चीज़ तथा दूध का पाउडर बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त यहाँ कागज़ तथा दिया सलाई उद्योग भी इन्हीं की देन है। जैविक अंतर स्थानांतरण, बायोटिक ट्रांसमाइग्रेशन, कृषि पौधों का अंतर स्थानांतरण। कृषि पौधों के अंतर स्थानांतरण के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम मानव उपयोग हेतु आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों के उद्भव केंद्रों का निर्धारण किया गया है। तत्पश्चात पूर्व वर्णित मानव प्रवासों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि इनके कारण ही ये सभी पौधे अब हिंद महासागर के तटवर्ती सभी देशों में उत्पन्न किए जा रहे हैं। कृषि पौधों के उद्भव केंद्रों के अध्ययन का सर्वप्रथम श्रेय वैज्ञानिक डी कैंडोले को जाता है, जिन्होंने 1838 में कृषि पौधों की 247 जातियों का अध्ययन कर उनके उद्भव केंद्रों का अनुमान लगाया। इनके निष्कर्ष प्राचीन इतिहासज्ञों, चीनी लेखों, पुरातत्वीय अनुसंधानों जैसे मिस्र के पिरामिडों, पाम्पियाई तथा स्विस झील निवासों के अवशेषों, विभिन्न भाषाओं में फसलों के नामों के दार्शनिक प्रमाणों तथा विभिन्नताओं व वितरण पर आधारित वनस्पतिक प्रमाणों के निष्कर्षों पर आधारित थे। डी कैंडोले के अनुसार लगभग सभी कृषि पौधों का उद्भव अत्यंत प्राचीन काल में कुछ विकसित सभ्यता के क्षेत्रों में हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जो कि अत्यंत आधुनिक काल में प्रवासित व विकसित हुआ, में इन रूपों का अभाव दृष्टिगोचर होता था। डार्विन 1868 का विचार था कि जंगली पौधों में बहुत बड़े रूपांतरण के फलस्वरूप ही कृषि पौधों का उद्भव हुआ। मेंडेल ने अनुवांशिक नियमों का अध्ययन किया तथा यह बताया कि संकरण तथा चुनाव के कारण प्राकृतिक भिन्नता पाई जाती है। बेविलोव 1926-1935 ने कृषि पौधों के रूपों तथा उनके जंगली संयोगों का विश्व के विभिन्न भागों से एकत्रीकरण किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्नता का अध्ययन कर इन्होंने कुछ क्षेत्रों में अमूक फसलों में बड़ी विविधता पाया, जैसे गेहूं की विश्व में पाई जाने वाली विविधताओं में आधी से अधिक विविधता अकेले अबिसिनिया क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे प्रदेश संख्या में बहुत कम क्षेत्र में बहुत छोटे हैं तथा उष्ण या उपोष्ण कटिबंधी पर्वतों या उनके पाद प्रदेशों में स्थित हैं। बेविलोब ने इन्हें कृषि फसलों के उद्भव का प्राथमिक केंद्र माना है। इन्हीं केंद्रों में विश्व के सभी कृषि फसलों का उद्भव हुआ है, जहाँ से ये संसार के अन्य भागों में ले जाए गए। इन प्राथमिक केंद्रों में बोई जाने वाली फसलों की सर्वाधिक जंगली जातियाँ पाई जाती हैं तथा कृषि फसलों से लेकर पूर्णतया जंगली जाति तक की सभी जातियाँ क्रमवार मिलती हैं। इन केंद्रों में प्रभावी अनुवांशिक गुणों की बहुलता मिलती है, जबकि विश्व के अन्य भागों में जहाँ कृषि फसलों के से अधिक रूप में पाए जाते हैं, अप्रभावी गुण अधिक विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार पौधों के जंगली प्रकार से कृषि की स्थिति तक आने का निश्चित मार्ग स्थापित किया जा सकता है। कृषि फसलों के क्रम विकास के दौरान बहुत से उत्परिवर्तक उत्पन्न हो जाते हैं तथा ये उपयोगी उत्परिवर्तक प्रधानतः अप्रभावी गुणों वाले होते हैं जिन्हें कृषि द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। यही कारण है कि सामान्यतया जंगली जातियों के प्रभावी गुण मिलते हैं जबकि कृषि पौधों में अप्रभावी गुण अधिक होते हैं। जातियों तथा प्रजातियों की विविधता के आधार पर वेविलोब ने संपूर्ण कृषि फसलों के विश्व में आठ उद्भव केंद्र बताया है। पहला चीनी केंद्र, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी चीन के पर्वतीय प्रदेशों में विश्व के कृषि पौधों के उद्भव का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा स्वतंत्र केंद्र स्थित है। दूसरा अ भारतीय केंद्र, आसाम व बर्मा को सम्मिलित करते हुए पर उत्तरी पश्चिमी भारत व पंजाब को छोड़ते हुए। दूसरे का ब भारत मलय केंद्र, इसमें संपूर्ण मलय द्वीप श्रृंखला तथा बड़े द्वीप जैसे जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, फिलीपाइन तथा इंडोचीन आता है। तीसरा मध्यवर्ती एशियाई केंद्र, इसमें उत्तरी पश्चिमी भारत, पंजाब व कश्मीर, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पश्चिमी थ्यानशान आता है। चौथा पूर्व के समीप का केंद्र, इसमें एशिया माइनर का आंतरिक केंद्र, संपूर्ण ट्रांस काकेशिया, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान की उच्च भूमि सम्मिलित है। पांचवा भूमध्य सागरी केंद्र, छठा अबिसिनिया केंद्र, सातवा दक्षिणी मैक्सिको तथा मध्यवर्ती अमेरिकी केंद्र, आठवां दक्षिणी अमेरिकी केंद्र, पेरू, इक्वेडोर, बोलीविया। आठवें का अ चिली केंद्र, ब ब्राजील पैरागुए केंद्र। कुछ उष्णकटिबंधी फसलों का विद्वानों द्वारा निर्धारित उद्भव केंद्र निम्न है। चावल, चावल का उद्भव केंद्र बड़ा विवादास्पद रहा है। अधिकतर विद्वानों ने चावल की दो प्रमुख जातियों सैटाइवा तथा ग्लैबेरिमा में सैटाइवा का उद्भव केंद्र भारत तथा ग्लैबेरिमा का अफ्रीका माना है। कुछ विद्वानों ने जातियों तथा कृषि रूपों में सर्वाधिक विविधता की दृष्टि से इसका उद्भव केंद्र भारत ही बताया है। श्री कैंडोले के अनुसार कृषि धान का उद्भव केंद्र दक्षिणी भारत नियत किया गया है। रमैया तथा घोष 1951 ने आंध्र तथा उड़ीसा प्रांतों की सीमा पर स्थित जयपुर क्षेत्र में बहुत विविधता पाई जाती है जिसके आधार पर इसे उद्भव के द्वितीयक क्षेत्र की संज्ञा दी है। इसके विपरीत कुछ विद्वान धान का उद्भव केंद्र चीन तथा इंडोनेशिया प्रायद्वीप बताते हैं। गेहूं, गेहूं की खेती सर्वप्रथम भूमध्य सागरीय या पश्चिमी एशिया में प्रारंभ की गई। कठोर गेहूं का उद्भव पश्चिमी अफ्रीका बताया जाता है। षष्ठगुड़ी गेहूं का उद्भव केंद्र अबिसिनिया तथा चतुर्गुड़ी गेहूं का उद्भव केंद्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र निगत किया गया है। ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा पुरानी दुनिया के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध की फसल है। इसकी बहुत सी जातियां अफ्रीका तथा भारत में पाई जाती हैं तथा चीन और मंचूरिया में प्राचैतिहासिक काल में इसकी कृषि की जाति रही है। इसकी जंगली जातियां अफ्रीका में बहुतायत में पाई जाती हैं। कृषि ज्वार की 32 जातियों में से भारत तथा इंडोनेशिया में 11 और शेष अफ्रीका में पाई जाती हैं। जौ, टून व भूसी युक्त जौ की खेती सर्वप्रथम अबिसिनिया में प्रारंभ हुई। इसके विपरीत नग्न टुंड व भूसी विहीन जौ का उद्भव क्षेत्र चीन व पूर्वी एशिया, पूर्वी हिमालय रहा है। तिल, डी कैंडोले के विचारानुसार इसका उद्भव केंद्र सुंडा द्वीप रहा है। इसकी विविध जंगली जातियों की उपस्थिति के कारण 1932 में हिल्ट ब्रांट ने इसका प्राथमिक उद्भव केंद्र अफ्रीका निर्धारित किया है। भारत व जापान इसके द्वितीयक उद्भव केंद्र माने जाते हैं। केला, डी कैंडोले ने इसे एशियाई उद्भव केंद्र से संबंधित बताया है। इसका सबसे अच्छा कृषि स्वरूप बीज विहीन होता है जो कि संकर उत्पत्ति का द्योतक होता है। केले की सभी जातियों का उद्भव केंद्र असम, बर्मा, थाईलैंड, इंडोचीन, वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस है। आम, वेविलोब ने इसका उद्भव केंद्र भारत को माना है। मुखर्जी 1951 ने बताया है कि पश्चिमी गोलार्ध में स्पेन वासियों ने ले जाकर आम का उत्पादन प्रारंभ किया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसका परिचय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 4 से 5वीं सदी ईसा पूर्व ही पहुंच गया था। नारंगी साइट्रस पूर्वी एशिया में हजारों वर्षों से इसकी कृषि की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन तथा इंडोचीन इसके संभावित उद्भव केंद्र हैं। बैंगन यह पुरानी दुनिया की उष्णकटिबंधीय की उत्पत्ति है। 1500 वर्ष पूर्व के चीनी साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। बेबीलोप के अनुसार इसके 2 उद्भव केंद्र हैं, पहला उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय भारत तथा दूसरा चीन। प्याज, प्याज का प्राथमिक उद्भव केंद्र मध्य एशियाई केंद्र में उत्तरी पूर्वी भारत, अफगानिस्तान, ताजिक, उज्बेक तथा पश्चिमी थ्यानशान बताया गया है। यहाँ से यह विभिन्न दिशाओं में कृषि हेतु ले जाया गया। गन्ना, गन्ना उष्णकटिबंधीय पूर्वी भारत की उत्पत्ति है। इसका उद्भव केंद्र हिमालय हो सकता है। रिटर ने इसका उद्भव केंद्र पूर्वी द्वीप समूह को बताया तथा डी कैंडोले ने भारत व इंडोनेशिया को बताया है। चाय, आसाम, चीन तथा मंचूरिया चाय के उद्भव केंद्र हैं। इसका कृषि स्वरूप बर्मा, उत्तरी श्याम तथा चीन के चौड़ी पत्ती वाले तथा यूनान व टोंकिन के पर्वतीय वनों के छोटी पत्ती वाले रूपों के संस्करण से उत्पन्न हुआ है। कपास, अमेरिकन तथा एशियाई कपासों का उद्भव स्वतंत्र रूप से हुआ। चीन में जंगली कपास नहीं पाई जाती। गॉसिपियम अर्बोरियम का उद्भव क्षेत्र एशिया में तथा गॉसिपियम हर्बेसियम का भारत में है। जूट, जूट की बहुत सी जातियां अफ्रीका, अमेरिका, मैक्सिको, भारत, चीन, जापान, मेडागास्कर, ताइवान, थाईलैंड, जावा, मलय प्रायद्वीप, फिलीपाइन व श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। उपयुक्त सभी फसलों की कृषि हिंद महासागरीय राज्यों के उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वत्र बड़े प्राचीन काल से हो रही है। जैसा कि अध्याय के प्रथम भाग में बताया जा चुका है, यह इस बात का प्रमाण है कि 1498 में वास्को डिगामा के पूर्व भारत के भिन्न मार्गों में मार्गों की खोज के पहले ही अरब, भारतीय तथा इंडोनेशिया वासियों का अपने पुराने प्रकार के अविकसित पोतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण व प्रवास होता रहा तथा एक स्थान की कृषि फसलें दूसरे स्थानों पर ले जाकर बोई जाने लगी। जैसे चावल, गन्ना, केला, मसाले आदि दक्षिणी पूर्वी एशिया से ले जाकर अफ्रीका तथा पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों में बोया जाने लगा। इसी प्रकार अफ्रीका से ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों तक आया।